लो जल्दी जल्दी माइक दे दो, खड़े, अरे खड़े हो करके बोलो।
अंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तिहे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोपनिषद् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु तवैवास्मि न द्विमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणं
एकादशी के दिन कंस ने अक्रूर को आदेश दिया ये आप मेरे हितैषी हैं, मेरे मंत्री हैं, इसलिए आप नंद गोकुल में जाइए और किसी प्रकार से फल प्रपंच करके भी कृष्ण और बलदेव को यहाँ पर ले आइए। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, शंकर जी का धनुष यज्ञ, उसमें बड़े बड़े पहलवान लोग दंगल करेंगे और कृष्ण बलदेव जी भी इसमें शामिल होंगे। उसका ये मनसा थी जैसे इसे हम कृष्ण और बलदेव को हम मरवा डालेंगे इसमें। अक्रूर जी मथुरा से चले, रास्ते में जब रथ पर चढ़े तो बस इसी की चिंता, आज हमारा अहोभाग्य है कि आज भगवान के दर्शन हमें मिलेंगे, उनकी और कोई चिंता नहीं। कंस दुष्ट है ये बात ठीक है, किंतु उसने तो हमारे ऊपर में बहुत बड़ा भारी अनुग्रह किया है, जो कंस बलदेव और कृष्ण को बुलाने के लिए हमें भेज रहा है, ये दर्शनों का सुयोग दिया है, इसलिए हम उसके ऋणी या आभारी हैं। ये सोचते सोचते कहा हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले ईश्वरों के भी ये परमेश्वर हैं, आज भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी में अवतीर्ण हुए हैं और तरह तरह की अपने भक्तों के साथ में लीला भी कर रहे हैं, तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि उनके चरण दर्शन करेंगे। ऐसे सोचते सोचते जब गोकुल में पहुंचे तो उस समय शाम हो गई थी। गोधूली का लग्न शुभ माना जाता है, उसी समय लोग गोधूली के समय में ही अपना अन्य कार्य इत्यादि करते हैं। स्त्रियां घर में दीप जलाती हैं, वास्तु की पूजा करती हैं, शंख और ये घड़ियाल इत्यादि का वादन होता है घरों में। तो उसी समय में ये वहां पर पहुंचे। कृष्ण पहले तो वो नंद में गोकुल में पहुंच करके नंद गांव में कृष्ण के चरण कमलों को देखा, उसमें ध्वज ब्रजा अंकुश इत्यादि सब चिन्ह थे। रथ से उतर पड़े, अब बड़ी श्रद्धा से कृष्ण के चरण रज में लौटने लगे और उनको पुलकित होने लगे, उनमें अंगों में विकार होने लग गया। हम लोगों को ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कुछ अपराध के कारण। शुद्ध भक्तों का हृदय निर्मल होता है, इसलिए उनका हृदय में विकार होता है, गदगद हो गए। और वहीं पर मन ही मन में कितने संकल्प उठ रहे हैं, उसमें कृष्ण कहाँ थे बलदेव? यदि घर में गए होते शाम को तो नंद बाबा से पहले भेंट होती, उनको प्रणाम करते और उनसे बातें होती, किंतु इसमें लिखा भागवत में नहीं, ये जब गए तो उस समय में कृष्ण और बलदेव गोदोहन करके बस उसी में बच्चों में इस समय खेल रहे थे। विष्णु पुराण में और भी दूसरे पुराणों में ऐसा लिखा गया है ना? हरिवंश में भी लिखा गया है, कहाँ है कि उस समय में कृष्ण गोदोहन कर रहे थे या उस समय में बच्चों के साथ में, गोपाल बालकों के साथ में वो क्रीड़ाएं कर रहे थे और इसी समय पहुंचे ब्रह्माचारी के लिए, शंकर के लिए, लक्ष्मी के लिए, जिनकी कृपा बड़ी दुर्लभ है, और वो दोनों बालक रूप में वहां पर खेल रहे हैं। बालक रूप में होने पर भी अक्रूर उनको भगवान के रूप में देखा, क्योंकि ये दास्य भक्त हैं। जो सोदा मैया या रोहिणी मैया अथवा और ब्रज के जो हैं, इनकी भांति नहीं, वो भगवान की भगवत्ता नहीं देखते, अपने पुत्र के रूप में ही देखते हैं। इसलिए वहां जाकर के कृष्ण और बलदेव को प्रणाम करना चाहा, किंतु कृष्ण और बलदेव जी ने क्या किया, उनको प्रणाम नहीं करने दिया, बीच ही में रो करके उनको आलिंगन किया। करने से शास्त्र साथ में दम और गदगद हो गए। आज हमारा कितना सौभाग्य, ये कृष्ण की लंबी भुजाएं, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, उनकी मुरली भी कहीं जठर पठर में लगी हुई होगी, मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। वहां पर उनके हृदय में भगवान की करुणा के प्रति भाव उदित हुआ। ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है, जो जैसी भक्ति करता है हमारी, मैं उसी के अनुरूप में फल देता हूं। जैसे किसी दुकान पर चले जाइए, आपके पास में जितना पैसा होगा उसी के अनुरूप में उसकी दुकान से आप कोई चीज ले सकते हैं, किंतु भगवान का इससे भी अधिक, वो अहेतुक दया करने के लिए इस जगत में पधारे हैं। इसलिए ये जथां माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा भक्ति लेकर के, जितनी भक्ति लेकर के भगवान का दर्शन करने जाता है, भगवान उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में उन पर कृपा करते हैं, बल्कि उसे अधिक ही करते हैं। तो अक्रूर उनको भगवान समझ रहे हैं और उनके प्रति निश्चल भक्ति है, वह दास्य रस से। इसलिए जब उनको प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में झुके तो कृष्ण ने उनको झुकने नहीं दिया। लौकिक लीला का क्या किया, मर्यादा दिया लौकिक लीला में। लौकिक लीला में उनके चाचा जी लगते थे, उनके पिताजी वसुदेव जी के ये भैया लगते थे, इसलिए उनको प्रणाम नहीं करने दिया, बल्कि उनको उठा करके लंबी लंबी भुजाएं, लंबी भुजाओं का माने क्या है, बहुत उदार, लंबी भुजा में सबकी सामर्थ्य भी है। कृष्ण छोटे हैं किंतु उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है और शरणागतों का पालन करते हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि उनके सिर पर यह रख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। बलदेव जी ने क्या किया, महामति बलदेव ही चरणों में प्रवृत्त। अक्रूर को अत्यंत समादर और आतिथ्य की भांति, आतिथ्य मैंने वो अभी अतिथि होकर के आए हैं, उनके प्रति प्रदर्शन किया बलदेव जी ने भी। पहचानते थे अभी कृष्ण से उनका मिलन कभी हुआ है कि नहीं, और पहचानते हैं कि नहीं, हमारे समय किसी न किसी रूप में हुआ होगा, हो सकता है 12 वर्ष तक का समय है ना, इसमें हो सकता है कि अक्रूर ने कभी देखा हो सकता है। जैसे उद्धव जी थे, उद्धव जी से पहले मिलने का उल्लेख नहीं है, किंतु हो सकता है किसी न किसी रूप में मिले हों। और मथुरा से तो सब समय ब्रज में संवाद जाता आता रहता है, और वहां से भी ब्रज का संवाद आता है। जो कृष्ण का भजन करता है, बलदेव जी गुरु के रूप में है, उनके प्रति उनका बड़ा स्नेह होता है। जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनके प्रति बलदेव जी की बड़ी कृपा होती है। बलदेव जी की स्नेह है, बल दान करते हैं। कौन सा बल? चिन्मय बल प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारी भक्ति में आई गई सब विघ्न बाधाओं को वो दूर कर देते हैं, और ऐसी कृपा करते हैं जो कृष्ण जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने, बलदेव जी ने उद्धव उनको अक्रूर जी को अपने तरफ में आकर्षण किया स्वाभाविक प्रति के साथ में। क्यों? कृष्ण आकर्षणी च, भक्ति की 6 अवस्थाएं हैं। क्लेश साधनी, भक्ति का साधन करने में प्रेरित, निष्कपट रूप में गुरु पदाश्रय कर संबंध ज्ञान के साथ यदि कोई भगवान का भजन करता है तो पहली स्थिति में उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। जितने प्रकार के अनर्थ हैं जरूर दूर हो जाएंगे पहली अवस्था में भी, यदि शुद्ध रूप से हम निष्कपट होकर के संबंध ज्ञान के साथ में भजन करते हैं। किंतु हमारे कष्ट नहीं जा रहे, इसके दो कारण होंगे। क्या कारण? पहला कारण होगा यदि निष्कपट नहीं है, संसारिक भोग वासनाएं इत्यादि हैं, और पूर्व जन्म के या पहले पहले के जो भी अपराध हैं तो उसमें विलंब होता है। तो इसलिए जितने प्रकार के अनर्थ हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, ये भगवान के भजन से, साधन भक्ति करने से ही ये दूर हो जाते हैं। साधन किसको कहते हैं? ऐसे हरिनाम करने से नहीं, या एकादशी पालन इत्यादि से नहीं। कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति भाव युक्त हो, भाव प्राप्ति के उद्देश्य से अपने इंद्रियों से जो साधन हम करते हैं भक्ति का, उत्तमा भक्ति का, तो उसे साधन भक्ति कहते हैं। जरूर होगा दूर, पानी में जाएंगे और हम भींगेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर भीजेगा। हम भक्ति करते हैं हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होगा, और तरह तरह की विपत्तियां आ रही हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विपत्तियां दो प्रकार की हैं, अपने कर्मों से जो विपत्ति आती है वो एक प्रकार, कर्म वाली विपत्तियां सब बंद हो जाएंगी, किंतु जो विपत्तियां भगवान करुणा करके हमारे ऊपर में दी है, हमको दीनता लाने के लिए, भजन में सहायता के लिए, वो तो आएंगी। जैसे पांडवों पर विपत्तियां हैं, ये कर्म के द्वारा नहीं है। द्रौपदी पर जो विपत्ति आई वो पूर्व जन्म के कर्मों के वजह से नहीं है, ये किस लिए? भगवान ने अनुग्रह करके ये विपत्तियां दी हैं। इसलिए पांडव लोग कहते हैं, हे प्रभो, आप हमारे ऊपर में विपत्तियां ही दें, जिससे कि सब समय हम आपका स्मरण कर सकें, और आप भी हमारे लिए, हम लोग के निकट रहें। हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, किंतु ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं ये विपत्तियां दूर हो जाएंगी, क्लेश दूर हो जाएंगे। क्लेश भी बहुत प्रकार के हैं, जिसमें प्रारब्ध क्लेश, कर्म और पाप, पाप और पाप बीज, ये सब है। अप्रारब्ध कर्म सब जितने हैं सब उसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि भजन के द्वारा पुण्य फल भी नष्ट हो जाते हैं। जब तक कि पुण्य और पाप रहेगा तब तक भगवान की कृपा और भक्ति नहीं है, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। तब रहेगा क्या? भक्ति रहेगी। ऐसे लोग ही भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए अच्छा दूसरा अत्यंत दुर्लभ, सुदुर्लभा और मोक्ष, मोक्ष को भी लोग अत्यंत लघु कर देती है, छोटी बना देती है। मोक्ष भी भक्त नहीं चाहता है और अत्यंत सन्दानंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी चाहे, हृदय में बहुत गाढ़ा आनंद की अनुभूति होगी। भगवान का भजन करने वाला दुखी रहेगा ये संभव नहीं, तो वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है या कर रही है दुख में भी। क्यों? भगवान की कृपा रहती है, अनुभूति होती है। संसारिक जो हमारे संबंध हैं इनके वजह से कोई दुखी होता है, भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त मान लिया कि किसी कारण से घर छूट गया भक्त का, वो दुखी नहीं होगा। आज भगवान की बड़ी करुणा हो रही है कि मैं अब निर्विघ्न रूप से भजन करने के लिए इन लोगों ने हमको छोड़ दिया जिसको मैं छोड़ना चाहता था, ऐसी भावना होती है। कोई भी कष्ट आए उसको वैष्णवों को उसमें सुख ही आनंद ही मिलता है। इसलिए भक्त कभी भी यदि दुखी है, शोक से आतुर है, तो वो भक्त नहीं है। दूसरी बात, कृष्ण को आकर्षण करने वाली है ये भक्ति, कृष्ण को भी आकर्षण कर लेगी। इसलिए अक्रूर जी भक्त हैं, इनको अनर्थ भी नहीं है। ये तो हम लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बलदेव जी ने उनको आकर्षण कर दिया। इसीलिए बलदेव जी का नाम एक संकर्षण है, सम्यक रूप से जो कर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं बलदेव प्रभु जी। अनंतर लौकिक और वैदिक रीति नीति के अनुसार में बलदेव प्रभु जी ने अक्रूर की संबंधना की। क्या किया? दोनों भाई मिल करके अपने घर में ले गए। चाचा जी चलिए घर पर, वहां पर वो गए, दोनों ने इनको कुछ खिलाया पिलाया। यहाँ पर यशोदा मैया भी तो घर में होंगी और नंद बाबा भी होंगे, तो ये बलदेव जी का क्यों लिखा गया और कृष्ण का जी उन्होंने खिलाया पिलाया? इसलिए हो सकता है कि वो अपने कामों में कुछ संज्ञानिक में हो, अथवा मैया से मांग करके दे रहे हैं। जब खिलाया पिलाया तो उनका पत्सम बांध किया दोनों भाइयों ने, उनके पैरों को दबाया और थोड़ा सा स्वस्थ हो गए तो नंद बाबा फिर मिले। नंद बाबा मिलने पर बड़े प्यार से उनको अपने पास में बैठाया, आशीर्वाद दिया और ये कहने लगे, देखो बेटे, उनके भाई लगेंगे, भैया कंस बड़ा भारी दुराचारी है, लाखों बच्चों को मरवाया और ब्रज में तरह तरह के उत्पात कराए, यहाँ तक कि यादव लोग यहाँ से भाग करके दूसरे दूसरे राज्यों में चले गए, तुम लोग वहां पर कैसे हो? तुम्हारा कुशल मैं क्या पूछूं, तुम्हारा कुशल नहीं होगा। जैसे दांतों के बीच में जी पड़ी रहती है बेचारी और थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो वो उसे कुचल डालती है, ये तो दुष्ट है, इसलिए सब समय भक्तों को कष्ट देता है। इसलिए तुम्हारा कुशल न पूछना और पूछना दोनों बराबर है, तो कैसे तुम अभी तक जीवित हो और कैसे रह रहे हो और किस प्रकार से यहाँ आए, ये सब पूछने लगे उनसे। अक्रूर जी इनसे बात किया, इनके बाद में फिर जब सोने चले गए इनको भी सुलवाया, उसी समय कृष्ण बलदेव से फिर इनकी भेंट हुई और तब इन्होंने कहा देखो मेरे आने का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? असल में तुम्हारी मैया और पिताजी जो हैं वसुदेव और देवकी जी हैं, तुम यहां पर केवल लालित और पालित हुए हो, इस सत्य को तुम समझो। वसुदेव और देवकी ने जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ तुमको कंस मार न डाले, इसलिए आप उन लोगों ने किसी प्रकार से छिप कर और नंद बाबा के घर में यहां गोकुल में भेजा। बलदेव जी ने कहा ये तो आप नई बात कर रहे हैं, हम लोग इसको नहीं मानते। कृष्ण ने भी कहा कि हम नहीं मानते, किंतु एक बात है, वसुदेव जी नंद बाबा के भैया लगते हैं, दोनों में बड़ा स्नेह है। यशोदा जी का भी देवकी के प्रति सख्त व्यवहार है और कंस उन पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम लोग चलेंगे और उनका कष्ट दूर करने की चेष्टा करेंगे, कंस को हम लोग मार गिराएंगे। इस तरह से अपने पिताजी के बंधु का हम उपकार करेंगे, किंतु हम ये नहीं मानते जो कंस वसुदेव और देवकी जी हमारे माता और पिता हैं। इस प्रकार से बातें होने पर बच्चे उन्होंने कहा गुरु जी ने जी देखो आजकल कंस अपने अत्याचार की सीमा पर है, रोज उन्हें पैरों से ठुकराता है, हथकड़ी और बेड़ियों में कस दिया है, कभी कभी उनकी छाती पर पत्थर रखता है और ऐसा अपमान करता है जिसको अपमान को सहना बड़ा भारी कठिन है। यदि आप लोग आजकल में नहीं गए और विशेष कर उसने निमंत्रण दिया है तो दो एक दिन में उसे मार भी डाल सकता है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह समुचित अवसर है, आप दोनों इसका प्रतिकार करें। इस प्रकार से कह करके कृष्ण और बलदेव जी को प्ररोचना देने लगा, प्रेरणा देने लगा, उनको उत्साह भरने लगे कि किसी प्रकार से ये ब्रज में मथुरा में चलें और उसको दंड विधान करें। इस प्रकार से सारी रात उनसे बात हुई। इसके बाद में निर्णय इन लोगों ने लिया जी चलना है, अब सवेरे नंद बाबा जी से बातचीत होगी और तब फिर कैसे वो ब्रज से चले यही हमारा प्रसंग है। गोपियों के साथ में उनका क्या वार्तालाप हुआ, अक्रूर जी के प्रति उनकी क्या भावना थी, उस समय गोपियां जो कृष्ण मथुरा से जा रहे हैं इसकी भावना क्या थी, इस पर हम कल से प्रवचन करेंगे। आज रात हो गई, अभी हम लोगों को कीर्तन में जाना है, आप भी उस कीर्तन में जाएंगे और लोग यदि आए हैं तो पास ही में एक कीर्तन है जनरलगंज में, अभी जल्दी से आरती हो जाएगी तो आप लोग उधर चलिए, हम भी 10 मिनट के लिए आ जाएंगे यदि ठीक रहा तो। लो एक कीर्तन करेगा।